जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे, भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरने लुटारे, लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना, सदा हंसते हुए सपना अगन में, किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में, तू जल रे परवान कर प्राण की, ये भी एक लीला है भगवान की, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा, अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा, जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना।
ओम शांति। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे तू जलते रहना, सूरज रे तू जलते रहना। यदि विश्व को रोशन करना है तो क्या करना होगा? जलना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात जलना, ब्रह्मा कुमार जीवन अर्थात जलना। जगत भर की रोशनी के लिए। सारे संसार में अंधकार समाया हुआ है, ऐसे संसार को यदि रोशन करना है, ऐसी अंधेर नगरी में फिर से रोशनी लानी है, तो काम किसका है? ये हमारा काम है, सूरज का काम है। हम मास्टर सूरज है, मास्टर सूर्य है। जगत कल्याण की खातिर तू जन्म मारे, तेरा जन्म ही किस लिए हुआ है? जगत कल्याण के लिए। तुझे भेजा ही इसलिए गया है कि जगत का कल्याण करे, दूसरा कोई औचित्य ही नहीं है तेरे आने का। और यदि तुझे यह कार्य करना है तो इस कार्य में सबसे पहला काम है खुद जलना। तू जग के वास्ते हर दुख उठा रहे, भले ही अंग तेरे भस्म हो जाए। और इस कार्य में यह निश्चित है कि तेरे अंग भस्म होंगे, क्योंकि तुझे भेजा ही इसलिए गया है कि तू जल जल और प्रकाश फैला, तू जल जल, तू मर और प्रकाश फैला। तू जन्मा ही है मरने के लिए। तू जल जल के यहां किरने लुटा रहे, क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा। किस लिए? किरने लुटाने के लिए। लिखा है यही तेरे भाग में, विधि का विधान ही है, तेरे भविष्य में ये लिखकर ही भेजा हुआ है, कुंडली में पहले से ही है। लिखा है यही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे सदा आग में, तुझे आग में ही रहना होगा। इसके लिए ये मत समझना कि मैं इस आग से मुक्त कैसे हूं, इस पीड़ा से छूटू कैसे। ये पीड़ा नहीं है, इसी पीड़ा से संसार का कल्याण है, इसी पीड़ा के गर्भ में जगत कल्याण का अंकुर समाया हुआ है। सूरज रे चलते रहना, दिल को बड़ा राहत है, दिल को बड़ी राहत ठंडक देती है ये बातें। ये संकट तो खुशी के साथ सह लेना, संकटों के अंबार लगे हुए हैं संसार में, समंदर है। आज की मुरली में है दुख और अशांति, ये मत समझना यहां सुख मिलेगा। सुख तो केवल सुखधाम में है और शांति धाम में है, केवल वहीं शांति है, और कहीं ना शांति है और कहीं ना सुख है, केवल वहीं है। ये बातें केवल तुम जानते हो, बाप तुम्हें महीन और सूक्ष्म और गुह्य बातें समझाते। पहले जो ज्ञान था बड़ा हल्का फुल्का था, पर ज्ञान भी तो बदलेगा। अब मैं जो तुमको सिखाता हूं बड़ा ही सूक्ष्म है। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना, सदा हंसते हुए क्या करना? तपना अगन में किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने। यह क्यों सहन कर रहा है? क्योंकि तुम्हारे द्वारा एक आदर्श स्थापित करना चाहता है वो। इसके लिए जो आदर्श स्थापित करने वाला है उसको तो तपना पड़ेगा। कर्ण का अंतिम निर्णायक युद्ध अर्जुन के साथ, उसके गुरु परशुराम उसके स्वप्न में आके कहते हैं कर्ण विजय अर्जुन को दे देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म देने के लिए हुआ है, क्योंकि इसी में तुम्हारी महानता है, तुमको देना ही पड़ेगा। यह संकट तू खुशी के साथ सह लेना, सदा हंसते हुए तपना अगन में किसी आदर्श की रक्षा के हेतु प्रभु ने, हित प्रभु ने तुझे भेजा है। कहां पर? ज्वाला के भवन में। कहां भेजा है? ज्वाला के भवन में। सेंटर अर्थात ज्वाला का भवन, मधुबन अर्थात ज्वाला का भवन, ये यज्ञ अर्थात ज्वाला का भवन, ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ज्वाला का भवन, ब्रह्मा कुमार जीवन अर्थात ज्वाला का भवन, ब्रह्मा कुमारी संस्था अर्थात ज्वाला का भवन, किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है इस ज्वाला के भवन में। ये यज्ञ क्या है? ज्वाला का भवन। यज्ञ में तो ज्वाला ही होती है ना, और हम बैठे कहां है यज्ञ में? तो जलना तो पड़ेगा। यह मत कहना कि मुझे सेक ना लगे, मैं जलू ना, सब कुछ मेरा ठीक हो, कोई मुझे कुछ कहे ना। तू जल रहे पर परवाह ना कर प्राण की। अब प्राण की क्यों परवाह करता है? क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य क्या था यहां आने का? जल मरने का परवाह ने हो, क्षमा पर किस लिए आए हो? मरने के लिए या बचने के लिए? क्षमा से भागने के लिए आना होता तो आए क्यों? फिर किसने निमंत्रण थोड़ी दिया था तुमको? आओ, शमा ने बुलाया क्या कभी? वो तो जल रही है शमा, तुम ही आए अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। अब आए हैं तो जलो, तो मरो, क्योंकि मरने के लिए आए हो। तू जल रे परवाह ना कर प्राण की, ये भी है एक लीला भगवान की। सूरज रे क्या कर सूरज, तू जलते रहे। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगन में है अंधेरा। अरे जब तक ना हो घर घर में उजियाला, समझ ले अधूरा काम तेरा। तब तक तुम जा नहीं सकोगे, आज की मुरली में ये मत ख्याल करना कि मैं जल्दी चला जाऊं। जल्दी जाने का ख्याल मत करो, ये ख्याल पर आता है कभी कभी कि काम मेरा पूरा हुआ है, मुझे जाना है। समझ ले ये काम तेरा अधूरा है। कभी दादी प्रकाश मणि ने मेडिटेशन हॉल में हाथ उठवाया था, घर जाने की तैयारी किस किस की हो गई है, सबने हाथ खड़ा कर दिया। जगदीश भाई ने हाथ नहीं खड़ा किया, तो दादी ने पूछा कि वो आपकी तैयारी नहीं है? वो कहते जाना तो है पर काम पूरा हुआ ही नहीं है, कैसे जाऊं? असंख्य लोगों को अभी संदेश देना बाकी है। अरे जब तक ना हो घर घर में उजियाला, तब तक क्या, समझ ले तेरा ये काम अपूर्ण है। तेरा काम पूरा हुआ ही नहीं है जब तक एक एक को संदेश ना दे दो। एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, जब तक एक एक के हृदय में परमात्मा प्रेम स्थापित नहीं कर देंगे, एक एक छाती में परमात्मा प्रेम का झंडा नहीं गाड़ देते, तब तक काम पूरा कैसे होगा? कोई भी पृथ्वी का इलाका बाकी नहीं रहे। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी जगत का उद्धार हुआ नहीं है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। इसलिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ब्रह्मा कुमार जीवन में जलना, ब्रह्मा कुमारी जीवन में जलना अर्थात क्या, उसकी आज चर्चा करेंगे। टू बर्न, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन, यदि तुम्हें सूरज की तरह प्रकाशित होना है, यू मस्ट बर्न लाइक द सन फर्स्ट। यदि सूरज की तरह चमकना है इस संसार में, तो तुम्हें सूरज की तरह जलना पड़ेगा पहले। बिना जले तुम चमक नहीं सकते। तो जलना अर्थात सहन करना। एक आश्रम में, बहुत बड़ा आश्रम, जहां पे नित्य नए सन्यासी, नित्य नए युवक संन्यस्त होने आते, पहले ब्रह्मचारी और फिर सन्यासी बनते, वहां एक नव युवक आया ब्रह्मचारी बनकर, पर वो बड़ा ही नटखट था, बड़ा ही चंचल था, बहुत नटखट, बहुत चंचल, एक जगह बैठता नहीं था। उसका ध्यान सारा इधर उधर जाता था, ये देखो वो देखो, संसार को देखो, यहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है। पर वो जो आश्रम था बड़ा ही सुरक्षित आश्रम था, बड़ी बड़ी दीवारें थी और शाम होते ही लॉक हो जाते थे, परिंदा भी अंदर नहीं आ सकता था, ना अंदर का कोई बाहर जा सकता था, कड़े कायदे और कड़े नियम थे। पर वो जो नवसिखिया, वो जो नया लड़का आया था, अभी संसार की इच्छाएं तृष्णाएं पूरी नहीं हुई थी, अभी चंचलता बहुत थी, हमेशा सोचता रहता है क्या करूं जो बाहर जाऊं। और एक रात एक शाम वो देखता है सारे लोग सो गए, कहता है थोड़ी बाहर की दुनिया भी देख के हूं, कई दिनों से बाहर गया नहीं। तो दीवार के पास आता है और वहां एक बड़ा सा स्टूल रखता है, स्टूल और उस पर चढ़कर कूद कर बाहर जाता है। तो जो प्रमुख वहां के थे, प्रभारी कहो या मठाध्यक्ष कहो या हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, वो जो सीनियर मंग, सीनियर साधु सन्यासी, वो जब चक्कर लगा रहे थे तो उनको दिखता ये स्टूल कहां से आए हैं, और वो एकदम से ताड़ लेते हैं कि जरूर ये वही विद्यार्थी होगा जो जरूर कहीं बाहर गया होगा आज रात को। तो वो वहीं खड़े रहते कई देर तक, मध्य रात्रि बीत जाती है वो वहीं खड़े रहते, और फिर उधर से आवाज आती है किसी के आने की, तो वो क्या करते स्टूल को हटा देते और खुद अपने घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हो जाते। तो अंधेरा होता है, उसको तो लगता है कोई स्टूल ही है, तो वो ऊपर से धाड़ से कूदता है इधर से उनके शरीर पर, तो उसको नरम नरम लगता है और फिर वो कूदता है नीचे तो देखता है गुरुजी, तो होश उड़ जाते हैं, वो तुरंत भागता है अपने कमरे में और जाके चुपचाप सो जाता है, और रात भर सो नहीं पाता है क्योंकि अब सुबह की क्लास में क्लास होगी सुबह जो क्लास होती है ना प्रवचन मॉर्निंग क्लास, उसके पहले या बाद में क्लास तो होनी है एक, तो वो इतना डर जाता है कि इन्होंने देख लिया। पर जैसे वो क्लास में आके बैठता है, प्रवचन होता है, प्रवचन पूरा भी हो जाता है, गुरुजी कुछ भी नहीं बोलते उसको, एक शब्द नहीं बोलते। वो कहता है अब सारे विद्यार्थियों के सामने निंदा होगी, घर पर समाचार जाएगा कि आपने तो सीखने के लिए भेजा है यहां पर और ये क्या गुल खिला रहा है यहां, आधी रात को उठ के भागता है। गुरुजी कुछ नहीं कहते उसको, और थोड़े ही दिनों के बाद उसमें अपने आप परिवर्तन आ जाता है, अपने आप टाइम पर क्लास में आना, अपने आप सुबह योग के लिए उठना, अपने आप पर अपने आप दिन भर आश्रम की जो विविध सेवाएं है वो करना, अपने आप ठीक हो जाता है। गुरु को पूछा जाता है आपने तो कुछ भी नहीं किया, वो कहता है मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूं और वो लोग याद रखे और डर जाए और वो बात जीवन भर याद रखे डर के मारे, ये शिक्षाएं मैं नहीं देना चाहता, पर इस कार्य में मुझे खुद को एक काम करना पड़ता है और वो है टॉलरेंस। मुझे अपने आप को क्या करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है इन सब को सिखाने के लिए। टॉलरेंस, टॉलरेंस की बड़ी ऊंची परिभाषा है। टॉलरेंस खाली सहन कर लेना उतना नहीं है, बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं उसमें टॉलरेंस में। तो वो गुरु कहते हैं कि टॉलरेंस में दो चीजें हैं, T=C+T, कंपैशन और ट्रुथ। सहन करना अर्थात संपूर्ण सत्य में स्थित होना, और सहन करना अर्थात रहम दिल। हम सहन क्यों करें फिर दूसरों को, जब तक हम में सत्य नहीं तब तक हम सहन नहीं कर पाएंगे, जब तक सत्य के प्रति हमारी निष्ठा नहीं तब तक हम सहन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा रहम दिल, ये जो गीत था ये फिल्म का गीत है और बहुत पुरानी फिल्म, हेमंत कुमार का गाया हुआ, हरिश्चंद्र पर, फिल्म का नाम हरिश्चंद्र तारामती, हरिश्चंद्र की आजमाइशें होती है, परीक्षाएं होती है, बहुत सत्य के लिए उसको सहन करना पड़ता है। आगे किस अगले संडे की मुरली, सत्यता की अथॉरिटी, सत्य स्वरूप सत्यता ही सब कुछ है। बाबा ने कहा संसार में जो अथॉरिटी है उसमें तो हलचल है, ये भगवान की सत्यता की अथॉरिटी है। तो सूरज रे क्या करना, जलते रहना, सहन करते रहना। किसी आदर्श के हित प्रभु ने तुझे चुना है, तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। विश्वामित्र और देवताओं की मंत्रणा मीटिंग होती है जिसमें वशिष्ठ कहता है कि विश्वामित्र हरिश्चंद्र जैसा कोई भी नहीं है, परंतु इन दोनों की शत्रुता तो हमेशा से है। वो कहता है ऐसे कैसे है, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। विश्वामित्र जाता है और उसकी परीक्षा लेना चालू करता है और उसके स्वप्न में जाता है, उससे दान मांगता है, दान वो दे देता है और फिर एक्चुअल जाता है। ये कहानी मार्कंडेय पुराण में सबसे ज्यादा लिखी हुई है, देवी पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवतम में, महाभारत में थोड़ी सी लिखी हुई है, ऐत्रेयी पुराण, ब्राह्मणा, अलग अलग जगह पर लिखी हुई, पर सबसे ज्यादा मार्कंडेय पुराण में आती है। इक्ष्वाकु वंश का राजा हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी ने कहानी जब बचपन में सुनी, स्टेज पर ड्रामा देखा, प्ले, ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि पूरा जीवन सत्य को अर्पित कर दिया केवल ये एक कहानी सुनने के बाद, केवल और केवल हरिश्चंद्र की ये कहानी सुनने के बाद। ये जीवन ही सत्य और अहिंसा को बना दिया और उसे एक व्यक्ति के आधार से असंख्य भारत की दिशा और दशा बदल गई बाद में। इतनी महत्वपूर्ण ये कहानी है। विश्वामित्र आता है और कहता है कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, मुझे कुछ दो। वो कहता है मुझे जो मांगोगे, वो कहता है पूरा राज्य दे दो। वो कहते ले लिया, अब तुम क्या करोगे? तो सारे प्रजा विरोध करते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारा राजा है, आप कैसे ले सकते हो राज्य। विश्वामित्र कहता है कि यदि तुम यहां रहो तो ये लोग विद्रोह करेंगे मेरे विरुद्ध, क्योंकि राजा तो अब मैं हूं, तुमको यहां से जाना पड़ेगा। वो कहता है मैं जा रहा हूं, और हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और रोहित के साथ जाने लगते। वो कहते रुको, ये कपड़े, वस्त्र, ये आभूषण कहां ले जा रहे हो, ये तो रखो अब, क्योंकि राज्य मेरा है। फिर जाने लगते, कहते रुको कहां जा रहे हो, वो जो तुम दान देने वाले थे उसका क्या हुआ? दान तो ये दे दिया, पर वो जो दक्षिणा देने वाले थे स्वप्न में जो तुमने दान दी थी उसका क्या हुआ? वो कहते मैंने सारा राज्य तो दे दिया। अच्छा ठीक है, तुम अपने शब्दों से मुकर रहे हो तो जाओ। वो कहते नहीं नहीं, मुझे कुछ समय दो, एक मास के अंदर दे दूंगा। पर वो कहते अगर तुम नहीं आए तो? वो कहता है वो तो इक्ष्वाकु वंश है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न। वो कहते मैं दूंगा सूरज चांद सितारे नक्षत्रों की सौगंध। वो कहता है मैं अपना शिष्य नक्षत्र ही तुम्हारे साथ भेज रहा हूं ताकि तुम वापस बराबर आ जाओ। और वो अपना शिष्य उनके साथ भेजता है, एक मास की अवधि देता है। कितना धन, एक हाथी के सिर, हाथी के ऊपर खड़ा रहकर एक शक्तिशाली व्यक्ति एक सिक्का जितना ऊंचा उछाले उतना धन एक मास के अंदर चाहिए। और वो जाते हैं, दर दर की धक्के खाते हैं, भटकते हैं, कितने संकट आते हैं, और एक मास पूरा होता है, धन नहीं मिलता है। वो नक्षत्र उनका शिष्य, वो कहता है धन अब क्या करोगे? वो कहता है युक्ति बताता हूं, तुम बोलो कि मैंने वचन दिया ही नहीं था। वो कहता है ये मैं नहीं कर सकता। वो सजेस्ट करता है तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं भेज देते? वो कहते ऐसे कैसे भेज दूं, पर बाद में फिर मान जाता है, अपनी पत्नी को ही भेज देता है। और पत्नी जाती है तो बच्चा भी जाता है, पत्नी और बच्चे को भेज देता है और सारा धन उसको दे देता है। और फिर बैठता है बेचारा कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो नक्षत्र फिर आता है, कहता है मेरा धन। बोलता है आपका आएगा धन? बोलता है ये जो दे दिया ना तुमको, वो तो कहता है ये मेरा पारितोषिक था, ये तो मेरा पारिश्रमिक था, मैं जो एक मास से तुम्हारे साथ धक्के खा रहा हूं वो फ्री। बोलता है आप क्या करूं? बोलते अपने आप को भेज दो। वो अपने आप को भेज देता है एक चंडाल के पास, और वो जो पत्नी होती है और वो जहां जाती है जिस गृहिणी और यजमान के घर, वो उसे इतना सताते हैं, वो छोटे बच्चे को भी सताते हैं। और इस छोटे बच्चे को एक दिन लकड़ियां लेने भेजते, वो विश्वामित्र फिर से एक युक्ति करता है और सांप आता है और सांप काटता है। वो मां आती है बच्चे को लेती है और जाती है शमशान घाट। शमशान घाट में चंडाल के रूप में विश्व हरिश्चंद्र खड़ा है। वो कहता है जब तक पैसे नहीं दोगी मैं नहीं इसको दफन कर जलाऊंगा। फिर वो पहचान लेती है, वो कहती है तुमको तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र दिख रहा है उसको बेचो। कहते तुमने देखा कैसा इसका, ये तो केवल मेरे स्वामी ही देख सकते। वो कहते तुम ही वो। कहता ये हमारा बेटा है मर गया, वो जो भी हो पहले पैसे दो फिर ही मैं जलाऊंगा। वो कहती मैं अभी जाती हूं पैसे लेके आती हूं। वो जाती है पैसे लेने, विश्वामित्र फिर एक चाल करता है, वो राजा जो होता है उसका बेटे को वहां से उठाकर एक जगह डाल देता है रास्ते में, मर जाता है। और वो देखती है ये क्या हुआ, तब तक राजा के सैनिक आते, तुमने इसको मार दिया और इसके आभूषण चुरा लिए, पकड़ी जाती है। राजा कहता है मृत्युदंड, और उसको पकड़ के लाए जाते हैं उसी शमशान घाट में, बेटा मरा हुआ है और अभी पत्नी, और फिर वो उसको मारने लगता है। तब विश्वामित्र फिर से आते हैं, अभी भी टाइम है मेरी बात मान लो। वो कहता है बात मानने का सवाल ही नहीं, सत्य है, मैं तो तृप्ति को प्राप्त हो रहा हूं क्योंकि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। और तब कहीं जाके वो जैसे ही मारने जाता है उसके गले में हार आ जाता है, और फिर विश्वामित्र फिर से आता है और वो सब दिखाता है दृश्य। वो जो यजमान था, वो जो यम चंडाल था, वो स्वयं यमराज था, और वो जो गृहिणी और वो जो दुष्ट गृहिणी और यजमान थे वो स्वयं शिव और पार्वती थे दुष्ट तो ये सब उसकी क्या थी, परीक्षा थी। और फिर वशिष्ठ प्रकट होता है, कहा था ना मैंने तुमको विश्वामित्र कि इसके जैसा सत्यवादी कोई नहीं है। वो कहता तुमने कहा होगा, परीक्षा तो मैंने ली ना, फिर भी जीत तो आखिर मेरी ही हुई, विश्वामित्र इतनी जल्दी मानने वाला थोड़ी है। आबू में भी तो दोनों आए थे और दोनों की लड़ाई हुई थी, कहां पर, गोमुख ऐसे दिखाते वशिष्ठ आश्रम। तो सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए कदम कदम पर क्या है, बाधाई बाधाएं, बाधाई बाधाएं। तो जलना अर्थात ब्राह्मण जीवन में जलना अर्थात 10 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, 10 या 8 ले लो, 2 हटा देते वो थोड़ी ज्यादा ही है, 8 ही बहुत भारी है। सबसे पहला जलना है ईर्ष्या। जैसे इस ब्राह्मण परिवार में जो भी आगे जाएगा ईर्ष्या करने वाले जन्म लेंगे। अगर हम ईर्ष्या नहीं कर रहे हमसे अर्थात हम शायद आगे नहीं बढ़ रहे, ये भी हो सकता है। तो यहां जैसे जैसे जो भी आगे जाएगा अपने आप ईर्ष्या करने वाले मशरूम की तरह प्रकट होंगे। मशरूम होता है ना कब प्रकट होता है, जैसे बारिश आती तो बरसात में मशरूम प्रकट होते हैं। इसका सामना हर एक को करना पड़ेगा। ए सूरज रे क्या करना, तू जलते रहना अंदर ही अंदर। और जो ईर्ष्या करता है उसको जाके ये नहीं कह सकते कि तुम ईर्ष्या क्यों करते हो, ऐसा कह भी नहीं सकते। कुछ नहीं करना है, चुप रहना है, टांग खींचेंगे, सब कुछ करेंगे। सबसे पहला जलना ब्राह्मण जीवन, ब्रह्मा कुमारी जीवन में, ब्रह्मा कुमार जीवन में, वो है ईर्ष्या का सामना। और कैसे करना है, धैर्य से। कैसे करना है, मौन से। कैसे करना है, सहनशीलता से, आंतरिक जलकर, नो रिएक्शन से, नो रिएक्शन, कुछ नहीं। हमको याद है किसी बहन के लिए विरुद्ध, ब्रह्मा कुमारी सेंटर की बहन के विरुद्ध बहुत बड़ा पत्र जोनल इंचार्ज के पास आया। लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था, 3-4 पेज का, बहुत उसकी ग्लानी की, उसका ये चल रहा है वो चल रहा है। वो जोनल इंचार्ज बहन ने कहा जो लिखने वाला है ना डरपोक है, इसके लिए तो नाम नहीं लिखा, अगर सत्य होता ना सामने आके बोलता, इसके लिए ऐसे पत्र फालतू है, फाड़ दो इसको, कोई मतलब नहीं है इसका। क्योंकि जो अफवाह फैलाने वाले होते हैं, जो ईर्ष्या करने वाले होते हैं, वो डरपोक होते हैं, सामने आके हिम्मत नहीं होती बोलने की, पीछे पीछे बोलते, क्योंकि असत्य में भय है। दूसरा है अन्याय। वैसे ड्रामा में अन्याय होता नहीं है, फिर भी हमको लगता है हो रहा है, और जब लगे तब क्या करना, सूरज रे जलते रहना, चुप रहना। लग रहा है ये अन्याय है, ये इनजस्टिस है, ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर इस ड्रामा में अन्याय होता नहीं है, वो दूसरी बात है। पर अगर लगे संकुचित दृष्टि से, ट्यूबुलर विजन से, तो सूरज रे तू जलते रहना, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है, क्योंकि किसी आदर्श के हित प्रभु ने तुझे निमित्त बनाया है, जगत कल्याण के लिए तू आया है, और जगत कल्याण का रास्ता जलने से निकलता है। तीसरा फेवरेटिज्म, तीसरा फेवरेटिज्म अर्थात भाई भतीजावाद, अर्थात पार्शियलिटी, अर्थात इसको ज्यादा दिया मुझे कम दिया, इसको ज्यादा मान्यता प्राप्त हो रही है इसके तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पार्शियलिटी हो रही है मेरे तरफ क्यों कम, पक्षपात, पक्षपात हो रहा है यहां, ये इनके गांव के हैं तो इनको फेवर करते हैं, हम नहीं है वहां के तो हमको नहीं फेवर करते, हमारा चाटुकारी करने का स्वभाव नहीं है, इसके लिए आए तब से दुखी है और जो चाटुकारी करते हैं बटर लगाते रहते हैं बटरिंग वो बड़े सुखी दिखते हैं ऊपर से, होते नहीं है कभी। खुददार, सेल्फ रिलायंट, मांगना ना, ये बड़ा अच्छा चरित्र है। चौथा अपमान, इंसल्ट, ऐसा हो नहीं सकता कि अपमान ना हो, अपमान से गुजरना पड़ेगा, अपमान की आग से गुजरना पड़ेगा, तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में, ये तेरा भाग है, रहेगा तू सदा आग में, यही भाग है, यही भाग्य है। अपमान आएगा, इंसल्ट, जब ब्रह्मा को नहीं छोड़ा तुमको छोड़ देंगे, भगवान को भी नहीं छोड़ा तुमको छोड़ देंगे, तो इंसल्ट से भी गुजरना पड़ेगा, अपमान, उसके बाद में आरोप, आरोप, गलत आरोप, झूठा आरोप, तुमने कुछ किया नहीं है परंतु तुमने ही किया है, ब्लेम, ब्लेम लगाना, एक्यूजेशन करना, जैसे उसकी पत्नी तारामती, वो उसको पूछता है तुम यहां कैसे, वो कहते मैं तो जा रही थी पैसे लेने पर बीच में एक बच्चा दिखा गिरा, मैं जैसे उसको आश्चर्य से देख ही रही तो सैनिक आकर मुझे पकड़ के लेके गए और मुझे मृत्यु दंड सुना दिया गया, ना कोई सुनवाई कुछ नहीं, सीधा फैसला, आरोप, ये भी होगा इधर। और जब आरोप लगे तो समझना कि हमारे हिसाब चुकतू हो रहे उन आत्माओं से, अच्छा है फटाफट आरोप लग रहे, फटाफट कोई मेरी इंसल्ट कर दिया उससे आरोप चुक, मेरा बोझ तो मुक्त हो गया कम से कम, किसी जन्म में मैंने उसका अपमान किया, अब मैं बिना संपूर्ण कैसे बनूंगा जब तक वो मेरा अपमान ना करेगा, मेरा अब उसने मेरा अपमान कर दिया बहुत ही अच्छा हुआ, मेरा उससे हिसाब किताब पूरा हो गया, और भी होगा चार पांच आ जाए फटाफट, जिसको जिसको अपमान करना है फटाफट अपमान करे, क्योंकि मुझे संपूर्ण बनना है, मेरी यात्रा संपूर्णता की है, ऐसे सोचना है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, जलने वाली क्लास, अर्थात ब्रह्मा कुमारी जीवन में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिक सिक जल जल मरमर, जल 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 जल, आज की मुरली में जुदा जुदा हो जाते हैं, क्या होता है जुदा जुदा, हम कह रहे हैं मरमर, यहां तो कदम कदम पे मरना है, वहां लोग एक बार मर जाते काम पूरा, ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात रोज एक एक सेकंड में मरना ही मरना है, और वो मरना भी ऐसा कि मीरा रोए चुपके चुपके मेरो दर्द न जाने कोए, किसको सुनाओ, कोर्स में बताया नहीं, कोर्स में था कि सुख शांति मिलेगी, आने के बाद तो पता चला कुछ और ही आएगा, आने के बाद पता चला था ये लक्ष्मी नारायण देखो तुम ये बनोगे, पहले बताया था ये स्वर्ग में तुम जाओगे, पहले बताया था ये लीडरशिप क्वालिटीज, ये पॉजिटिव थिंकिंग, फिर बाद में पता चला दुनिया विनाश सब खलास, और तुम्हारे सारे हिसाब किताब यहीं चुकते होंगे, ये तो बताया नहीं था, सारी बीमारियां उथल खाएगी, ये तो बाद में पता चला, कोर्स कराने वाली बहन कहां गई, आरोप, आरोप तो लगेंगे, ब्रह्मा को नहीं छोड़ा तुमको नहीं, तुमको तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है, उसके बाद में अविश्वास, अविश्वास किया जाएगा। किसी सेंटर पर रहने वाले एक भाई ने सुनाया था, 20 साल से सेंटर पर रहा, एक बार बीमार हो गया, बहन को कहा कि मैं घर जाता हूं। बहन ने कहा घर जा रहे हो, आओगे कि नहीं वापस, कोई गारंटी है वापस आने की? 20 साल तक सेवा की, दिन रात झाड़ू पोछा से लेके हर चीज, बाथरूम की सफाई तक। और जाते समय बहन ने कहा अगर नहीं आए तो? हम बात कर रहे इस तरफ से, वो क्या सोच रहा है? वो तो हर्ट हो गया, दुखी हो गया, पर ये भी होगा ये शायद उसने सोचा ही नहीं था। वो दुखी नहीं, उसकी हम विधि बताएंगे, 16 विधियां, ये पूरा होने के बाद ये सारी परिस्थितियों को कैसे हंसते हंसते झेला जाए। ये तो सेंसिटिव व्यक्ति होगा तो यहां तो दुखी हो जाएगा, हमने इतना कुछ किया और हमको ऐसा ऐसा बोलते हैं, हम पर विश्वास भी नहीं है। टोली बनाने को बोला, वो कहते एक टोली कम है, अरे तो हमने खाई, सारा संसार छोड़ के इसलिए आए थे कि यहां सारी सरकारी नौकरी छोड़ के सेंटर पे रहने इसलिए आए थे, सारा संसार के मोह माया छोड़ के इसलिए यहां मधुबन में आ गए थे, ये छोटी सी चीज हम करेंगे? ऐसा आरोप, ऐसा अविश्वास हम पर। पर ये भी हो गया, ये तो सोचा ही नहीं ना, ये पहले से सोच के रखना ये भी होगा। ये वही चालू है एडवांस कोर्स। उसके बाद में असहयोग, अगला असहयोग। हमने इतना सहयोग किया, वो बीमार था चिमन भाई, 10 बार गए, आज हम बीमार हैं, एक बार भी आया नहीं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पूछते हो गया डिस्चार्ज, जब थे फ्रैक्चर के साथ, एक बार भी पूछा नहीं। हमने इतनी सेवा की, सेंटर से भोजन पहुंचाया जब वो बीमार था, तो आज हमको कुछ हो गया तो फोन करके पूछता भी नहीं है। हाँ वो क्या करना है वो कल सुनाएंगे, आज तो परिस्थितियां सुना रहे असहयोग। उसके बाद में निंदा, ये मत सोचना कि जो भी आएगा वाह तुम तो बड़े अच्छे योगी हो, तुम तो बहुत ही अच्छा बोलते हो, तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा है, तुम में ये कला बहुत अच्छी है, कहां से सीखी ये सेवा, तुम बहुत अच्छी करते हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, तुम्हारा ज्ञान बड़ा अच्छा है, ये सोचना कि सब मेरी स्तुति करे, ब्रह्म है। स्तुति जो कर रहा है एक दिन बदला भी तो लेगा। दुश्मन और दोस्त सब यही बनेंगे, और कब दुश्मन दोस्त बन जाए और दोस्त दुश्मन बन जाए बता नहीं सकते। आज जो दुश्मन है वो कल दोस्त बन जाते, आज जो दोस्त है वो कल दुश्मन बन जाते। जिनकी बहुत पालना की, बहुत पालना की, जिनका 7 दिन का कोर्स कराया, जिनको मधुबन लेके गए, जिनको पूरा 4 धाम घुमाया, वही स्टूडेंट आज दुश्मन बन गए और हमारे विरुद्ध में जाके ऊपर जाके कंप्लेन कर रहे हैं मधुबन में जाकर। वही माता है जिनकी इतनी पालना की, हाथ पकड़ के किचन में एंट्री दी, वही माता आज हमारे ही चरित्र पर कलंक लगाने में देरी नहीं करती। निंदा तो करेंगे, निंदा तो होगी, उसके बाद में धोखा। ये मत सोचना कि धोखा नहीं मिलेगा, और धोखा देने वाले कौन होंगे? बाहर वाले नहीं, इसी परिवार वाले, इसी परिवार से, क्योंकि सबसे ज्यादा हिसाब किताब तुमने इन्हीं लोगों के साथ बनाए, तो यहीं से धोखा मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट विरोध, क्रिटिसिज्म, विरोध, विरोध होगा। हमने कोई अच्छी आइडिया रखी, परंतु हमको लगा कितना अच्छे आइडिया है, सब लोग इसको मान लेंगे, पर जब रखी तब पता चला सभी विरोध कर रहे हैं। हमने इतनी अच्छी युक्ति बताई कि ये मास है, इसमें ये पुरुषार्थ किया जाए, सभी संगठित मिलके करेंगे, पर यहां तो पता चला कि सब लोगों ने उसको मिसअंडरस्टूड किया और कुछ कुछ को और ही अर्थ निकाले। हमने सोचा क्या था और लोगों ने कैसे कैसे कलंक थोप दिए, धोखा, भयंकर धोखा, धोखा होगा। दस हो गए, दस हो गए, हो गए, हो गए, दस हो गए, तो ये सब कुछ होगा। सहन कैसे करना, सहन कैसे करना, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। सहन ऐसे करना है इसको कि वो सहन करना न लगे। उसकी 16 बातें हैं, आज ले सकते हैं पर टाइम हो जाएगा, इसलिए कल लेंगे। तो जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा। ये मत समझा मेरे भाग में ये सब नहीं आएगा, जो बातें सुनाई है 10 के 10, इसमें से हरेक को हरेक बात से गुजरना पड़ेगा, चाहे इस परिवार में चाहे संसार के संसार में, लौकिक अलौकिक सब जगह, और हरेक को गुजरकर इसमें से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसमें दो मार्ग है, दो, एक तो जल जल के भस्म हो जाएगा और दूसरा हीरा बन जाएगा। हम क्या बनेंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी एक परिस्थिति आती तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, उदास हो जाता है बिल्कुल, कि मेरा इतना विरोध, मेरा इतना, इतनी निंदा, मेरी इतनी ग्लानि, मेरा इतना विरोध, मेरा इतने आरोप, इतना अविश्वास, इतना असहयोग मुझे दिया, हमने अपना सारा जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया और हमारे साथ ऐसी ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा ना, एक बार कोई भाई बहुत समय पहले भर्ती था, जिसने दिन रात सेवाएं की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि उसको ज्ञान योग के लिए कभी टाइम ही नहीं था, केवल सेवाएं। जब बीमार पड़ा और फिर सेवाधारी नहीं मिल रहा था कोई, एक दिन सेवाधारी था, दूसरे दिन नहीं था, फिर जा रहा था, आ रहा था, और फिर सेवाधारी चला गया, और फिर वो अकेला रह गया। इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, सोचने लगा कि 30 साल बाबा को दे दिए, इससे अच्छा शादी की हुई तो आज पत्नी और बच्चे होते साथ में, वो देखते। ऐसे ऐसे विचार आने लगे, सेवा तो बहुत की परंतु ज्ञान छूट गया, योग छूट गया। आज की मुरली में सेवा में भी मेहनत है, योग में भी मेहनत है, दोनों में मेहनत है। इसके लिए ज्ञान, तुम भरो अपने आप को ज्ञान से, बाप को खाली कर दो और भेजो खाली होकर, वो शांत हो जाएगा, तुम शांति में हो जाएंगे, तब टपकना ज्ञान बंद होगा। अब तुमको एवर प्योर बनना है, जैसे बाप प्योर है। अब रिंचक मात्र भी अपवित्रता ना हो, सेवा तो कर रहे परंतु अपवित्रता शायद होगी फिर भी, क्योंकि आत्मा में साकार मुरली आज की देहभान की धूल है, एलॉय है। लिखा है यही तेरे भाग में, तेरा जीवन रहे आग में, यह संकट तू खुशी के साथ सह लेना, सदा हंसते हुए तपना अगन में, किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में, तू जल रे परवाह ना कर प्राण की, ये भी है एक लीला भगवान की, सूरज रे जलते रहना, करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगन में अंधेरा है, कैसे शांति से सो सकते हो, तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए, जगत उद्धार में अभी देर है, तू अभी दुनिया में अभी अंधेर है। तो स्थिर होके बैठेंगे और कमेंट्री नहीं, गीत ही सुनना है। जलने की ये प्रक्रिया देखना है कि मैं आत्मा जल रही हूं, परंतु मेरा प्रकाश सारे विश्व में फैल रहा है। ओम शांति।
जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरने लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जल रे रहना, सूरज रे जल रे रहना। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना, सदा हंसते हुए सपना अगन में। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। तू जल रे परवान कर प्राण की, ये भी एक लीला है भगवान की। सूरज रे जलने रहना, सूरज रे जलने रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते।